نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے متعلق جو ایک واحد آیت اتاری ہے رمضان کے روزوں کے متعلق، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف ایک شور مچ جاتا ہے، جتنا اس مہینے کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی ہوتی ہے اتنی شاید سال میں کسی اور مہینے کی اس طرح سے سیلیبریشن نہیں ہوتی، ایسے اس کا استقبال نہیں ہوتا، ایسے اس کا ویلکم نہیں ہوتا جیسے رمضان کا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ اس قدر برکتوں والا ہے، اس قدر رحمتوں والا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض اترتا ہے اس مہینے کے اندر. برکت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر، اتنی خیر جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ خیر جو بڑھتی جاتی ہے، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے اس مہینے میں. ہم چاہے سمجھ نہ سکے اور ہمیں شاید اتنا اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن اگر ہم واقعی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکتیں اس مہینے کے اندر، تو شاید ہمارا جی چاہے کہ سارا سال رمضان ہی رہے، اتنا پیارا یہ مہینہ. اور یہ واحد مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن کریم میں نام لے کے کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا. تین آیتیں ایک ساتھ ہیں سورہ بقرہ میں، جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، رمضان کس چیز کا مہینہ ہے، اس میں کیا کرو، کیا تمہارا عمل ہونا چاہیے. تو رمضان کہتے ہیں جلنے کو، جلا دینا، اسی سے رمضان نکلا. رمضان مینس جو مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. 11 مہینے سے ہم جو گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بھیج کر ہمارے ان گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، جلا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے اور ہمیں پاک کر دیتا ہے. یہ اس قدر پیارا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ ایسے انسان کو جو غافل ہے نا 11 مہینے سے، جو کہیں کھو گیا ہے، جو کسی اور جگہ گم ہو گیا دنیا کے کاموں میں، اس کو اپنی طرف بلا لیا. یہ وہ مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس مہینے میں اتنے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. اتنے زیادہ انعامات ہیں اس مہینے کے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں پہ، تھوڑا سا آپ کام کریں انسان خود حیران ہو جاتا ہے، اچھا صرف اتنے سی پہ، اتنے پہ میری بخشش ہو جائے گی، اتنے پہ جنت مل سکتی ہے، اس پہ بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے. یعنی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں. لیکن یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے ہمیں بلانے کے طریقے ہیں کہ اے میرے بندے آ جا میری طرف، اے میرے بندے جو کھو گیا دنیا کے اندر، یہ ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں، آپ ان کو بہلانے کے لیے کیا کرتے ہیں، بچہ آپ کے پاس نہ آ رہا ہو تو آپ ایک کینڈی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ نا یہ لو. اچھا اب وہ کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے قریب کرنا. سمجھ لیں ہمارے جیسے نا سمجھ بھی ہیں نا، جن کو کینڈیز دکھانی پڑتی ہیں کہ وہ اللہ کے قریب آ جائیں، ورنہ ویسے نہیں وہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روزے کے اوپر، قیام کے اوپر اور لیلۃ القدر کے اوپر اتنے اتنے بڑے اجر رکھ دیے کہ بندہ آ جائے نا کسی طرح مڑ کے، وہ بندہ جو کھویا ہوا ہے دنیا کے اندر، آ جاؤ میری طرف پلٹ کے. تو یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مغفرت کا مہینہ بنایا، رحمت کا مہینہ بنایا، خیر خواہی کا مہینہ بنایا. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرتے ہیں بندوں کو کہ ہر رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. क्या मतलब? यानी हर रात में वो लोग जिन्होंने अपना नाम जहन्नमियों की लिस्ट में लिखवा लिया हुआ था, अल्लाह ताला उनको आज़ाद कर देते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान में हमारा नाम भी उनमें लग देना जिनको तू जहन्नम से आज़ाद करते, कि हर रात आज़ादी मिल रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसी आज़ादी, ये भी फरमाया जैसे मालिक गुलाम को आज़ाद करते। पता है पहले ज़माने में गुलाम हुआ करते थे तो उनकी आज़ादी कैसे होती थी, जब मालिक उनको आज़ाद कर देता था ना तो दोबारा कभी गुलाम नहीं बन सकते थे, वो फ्री होते थे, फिर कोई उनको पकड़ नहीं सकता था, अब मालिक का कोई हक नहीं रह जाता था उस पर। इसी तरह अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं, कि ये नहीं कि अब आज़ाद किया तो फिर दोबारा उसका नाम उसमें लिख दिया, नहीं, आज़ाद कर दिया तो फिर अल्लाह ने आज़ाद कर दिया, फिर उसको जहन्नम नहीं छुएगी। इस वजह से इस महीने के अंदर देखें कितनी खैर है कि हम अपनी आज़ादी का परवाना ले सकते हैं। ये वो महीना है जो जन्नत कमाने का महीना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, दौड़ लगाओ अल्लाह की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ। ये जन्नत इतनी सस्ती अल्लाह ताला कर देते हैं इस महीने में, डेकोरेट की जाती है जन्नत, पता है इस महीने में जन्नत की सजावट की जाती है, जन्नत को मुजयन किया जाता है इन बंदों के लिए जो रोज़े रखते हैं। अल्लाह ताला देखो कैसे सजाता है वहाँ पे, और छोटी छोटी चीज़ें करके आप, छोटे छोटे काम करके आप जहन्नुम के प्लॉट ख़रीद सकते हैं, जहन्नुम के जन्नत के महल ख़रीद सकते हैं, जन्नत के बागात ख़रीद सकते हैं, जन्नत की ज़मीन ख़रीद सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई यहाँ पे कहे कि अब कोई आपकी दोस्त का फ़ोन आता है अगर, और वो कहती है कि आपको पता है आजकल यहाँ पे किसी बहुत पॉश एरिया में, कोई क्लिफ्टन में, कोई बहुत अच्छे एरिया में बहुत सस्ते हुए में घर, जल्दी ले लो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जेब में पैसा नहीं भी होगा तो कर्ज लेके किसी से कहेंगे ख़रीद लूँ, इसलिए कि इतने सस्ते हुए हैं, दोबारा पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले। अल्लाह ताला ने भी जन्नत की ज़मीन सस्ती कर दी कि देखो आ जाओ मेरे बंदो, छोटे छोटे काम करके तुम अपने लिए जन्नत कमा सकते हो। ये जन्नत कितनी बड़ी है, इसका आरजी आसमानों ज़मीन के बराबर है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आखिरी जन्नती होगा, जो जहन्नुम से सबसे एंड में निकलेगा, वो एक आदमी होगा। आप इसको, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ जन्नत कितनी बड़ी है। वो जब अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से निकालेंगे, जहन्नुम के पास खड़ा होगा, बड़ी अरसे से फरियादें कर रहा था, अब उसको अल्लाह ताला ने निकाला, उसने कहा या अल्लाह बस मुझे जहन्नुम से निकाल दे, उसको निकाल के अल्लाह ताला जहन्नुम के किनारे पे खड़ा कर देंगे। जब किनारे पे खड़ा होगा, अब जहन्नुम से तो निकल आया, लेकिन हालत क्या होगी, वो जो जहन्नमी है उनकी चीखों पुकार, उनकी तकलीफ़, उनकी जो बदबू है उसको इतनी बेचैन करेगी, कहेगा या अल्लाह मुझे जहन्नुम से ज़रा दूर कर दे, अल्लाह मुझे जहन्नुम से ज़रा दूर कर दे। अल्लाह ताला से मांगेगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा लेकिन इसके बाद तो नहीं कुछ मांगोगे, कहेगा अल्लाह इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगता, बस मुझे जहन्नुम से दूर कर दे। अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से दूर कर देंगे, जब जहन्नुम से दूर करेंगे तो उसको दूर जन्नत नज़र आएगी, और जन्नत के नज़ारे नज़र आएंगे, और जन्नत की महक उसको महसूस होगी, तो कहेगा या अल्लाह मुझे जन्नत के करीब कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने तो कहा था मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, नहीं अल्लाह बस मुझे बस ये सिर्फ आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, इसके बाद नहीं कुछ मांगता। अल्लाह ताला उसको जन्नत के किनारे पर लाके खड़ा कर देंगे, अब देखेगा जन्नत में झांकेगा तो वहाँ पे लोग मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और कुछ अरसा तो खामोश रहेगा, सब्र करेगा, फिर उसके बाद कहने लगेगा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर देना। अल्लाह ताला कहेंगे तुमने तो कहा था मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, नहीं बस अल्लाह बस मुझे सिर्फ जन्नत में दाखिल कर दे। ये वो आखिरी है बंदा जो जन्नत में दाखिल होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ए मेरे बंदे मांग क्या मांगता है, तो वो कहेगा या अल्लाह दुनिया में जो कुछ था, ये था, वो था, जितनी चीज़ें उसके जहन में आएंगी मांगेगा, लेकिन इंसान की ना मांगने की भी एक हद है ना। जब आप दुआएं मांगते हैं तो अराफा के दिन दुआएं कबूल होती हैं, जो लोग भी हज पे कभी गए हैं क्या हमारा हाल होता है, थोड़ी देर दुआ करते हैं उसके बाद दुआ भी नहीं समझ आती कि क्या मांगे। इंसान की, इंसान खुद इतना लिमिटेड है, उसकी सोच लिमिटेड, उसकी ख्वाहिशात भी लिमिटेड ही हैं, जितनी भी कर ले। तो अब मांगेगा तो दुनिया की बादशाही मांग लेगा, दुनिया की चीज़ें मांग लेगा, सब मांग लेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जितनी दुनिया और जो कुछ उसमें था और उससे 10 गुना ज़्यादा। तो वो कहेगा या अल्लाह ताला, आप तो अल्लाह ताला हैं, आप मुझसे मजाक करते हैं। ये सुनाकर हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए। आपने फरमाया कि इंसान सोचेगा ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे इतना कुछ मिल जाए। अल्लाह ताला इतना नवाजने वाला है, जब वो नवाजने पर आता है, इंसान की मांगने की हद हो सकती है, उसकी नवाजने की हद कोई नहीं है। वो इतना देता है कि जिस पर करम फरमा दे वो बंदा तो उसकी झोलियां भर जाएं, झोली छोटी पड़ जाएगी, मगर देने वाले का करम इतना है। आप तो ले ही नहीं सकते उतना जितना वो नवाज सकता है। हम थोड़े दिले होते हैं, हम कहते हैं बस ये बस ख्वाहिश पूरी हो जाए ना तो बस। नहीं, कहें अल्लाह अभी भी तुझसे ही मांगना है, और फिर भी तुझसे ही मांगना है, और फिर भी तुझसे ही मांगना है। अल्लाह हमेशा तुझसे ही मांगना है, हम तो तेरे दर के फकीर हैं, हम तो मांगते ही रहेंगे। ये ना कहा करें बस इतना ही, ये ना कहा करें बस अल्लाह ये बस पूरी हो जाए ना फिर नहीं कुछ। नहीं, कहें अल्लाह हम तेरे दर के फकीर हैं, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। ठीक है, तो रोज़ा हमें ये सिखाता है कि रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हम वापस अल्लाह की तरफ पलट आएं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ऐना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो तुम, किधर जाते हो तुम, वापस पलट आओ। कुरान करीम जो है ना, इसके अंदर बाज़ लोग कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं उसके अंदर तो बड़ा डर लगता है। वो कोई आपको वईदें सुनाने के लिए नहीं है, आपको राह दिखाने के लिए है कि भटके हुए मुसाफिर आ जा वापस अल्लाह की तरफ। ये कुरान का महीना है और कुरान हिदायत का पैगाम है, रहनुमाई करता है। और देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। मुत्तकी कैसे बनेंगे, मैंने अभी आपके सामने जो आयत तिलावत की है उसमें नुस्खा है मुत्तकी बनने का, यानी मुत्तकी बनोगे तो इसे हिदायत पा सकते हो। ये तुम्हें राह दिखाएगा, फिर हर एक को राह नहीं दिख जाती, इससे मुत्तकी को दिखती है। ये ऐसे ही है, समझ लें कि जैसे आप कोई बंदा कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है लेकिन वहां पर रिक्वायरमेंट है, मसलन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है वो बंदा टाइपिंग सीखता है फिर जाता है उस नौकरी को करने के लिए, क्योंकि नौकरी की रिक्वायरमेंट है ये। इसी तरह कुरान से हिदायत लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी कैसे बनेंगे, रोज़ा रख के मुत्तकी बन सकते हो, अल्लाह ने ये नुस्खा दे दिया। और रोज़ा इतनी प्यारी इबादत है ना, इतनी खूबसूरत इबादत है। आपको पता है 5 अरकान में से एक है ना रमज़ान के रोज़े। ठीक है, आप देखें सारे जो 5 अरकान हैं ये सब के सब ऐसे हैं कि इनमें किसी ना किसी बंदे को पता चल सकता है या उसके साथ कोई इंटरेक्शन है। मसलन शहादा है, आप किसी के सामने इकरार करेंगे ना अल्लाह की तौहीद का। नमाज है, आप किसी ना किसी के सामने ही पढ़ रहे होंगे, इतना छुप के तो नहीं पढ़ सकते कि कोई आपको नमाज पढ़ते कभी देखे ही ना, जमात में पढ़ेंगे तो वैसे ही सबके सामने। ज़कात है, वो भी आप किसी इंसान को ही देंगे, उसको तो पता चल गया। हज है, वो भी आप लाखों लोगों के साथ मिलके करते हैं, वो भी नहीं छुपा सकते। मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि किसी को नहीं पता कि किसका रोज़ा और किसका नहीं है। एक बंदा अगर छुप के कहीं जाके कुछ खा लेता है दूसरों को नहीं पता, एक बंदा रोज़ा रख के बैठा हुआ है किसी को नहीं पता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि असौमु ली, ये रोज़ा मेरे लिए, और क्या अना अजजी बिही, मैं ही इसकी जजा दूंगा। ये सिर्फ मेरे लिए, इसका तो किसी इंसान से ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ इंसान मेरे लिए रखता है। और ये ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला इतना प्यारे तरीके से हमें सिखाते हैं ना कि अल्लाह के हुक्म के आगे हमें कैसे अपना सर झुका देना है इस इबादत से। वो कैसे, देखें आप रोज़ा रखते हैं, सहरी आपने की, आप टाइम देखते रहते हैं थ्रू आउट कि कब टाइम होगा रोज़ा बंद होने का। 5 मिनट भी आप ऊपर नहीं जाते, वो ही खाना जो चंद मिनट पहले आप खा पी रहे थे हलाल था, वो ही चंद मिनट बाद ऐसे हो जाता है कि जैसे बस ये कोई हराम चीज है ना। किसके हुक्म के ऊपर, अल्लाह के। आप इफ्तारी करने लगते हैं, इफ्तार में भी क्या होता है, आप ये नहीं कभी कहते आज मैंने सहरी की नहीं थी तो आज मैं इफ्तारी 5 मिनट पहले कर लेती हूँ। भाई भूखा प्यासा ही रहना है ना, तो हम मैं जल्दी सारा कर लेती हूँ, घंटे तो उतने पूरे हो गए मेरे, मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन अगर कर लिया तो क्या होगा, रोजा टूट गया। हम घड़ी देखते रहते हैं, एक एक सेकेंड को भी फॉलो करते हैं कि एक सेकेंड भी आगे पीछे ना हो जाए कहीं। उस वक्त खोलते हैं रोजा जिस वक्त सूरज गुरूब होता है, और उस वक्त बाज दफा ऐसे होता है कि दोपहर को आपको बड़ी रोजा लग रहा था, बड़ी प्यास थी, उस वक्त आके कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, अब दिल नहीं कर रहा खाने का, लेकिन अब कहा खाओ, पहले कहा था नहीं खाओ, तो अब खाना भी जरूरी है वरना रोजा मकरू हो जाएगा, रोजा खोलना जरूरी है। ये क्या बात हुई, अगर इतनी देर के लिए खाना पीना बंद ही करना था तो उतने घंटे तो हम जरा पहले भी पूरे कर सकते हैं, सहरी ना करके भी रात का खाया हुआ, बल्कि उससे भी ज्यादा घंटे हो गए जितने रोजे रखने के थे। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने घंटे भूखे रहे, आपको भूखे प्यासे रखना या आपको खाना आपने खाना है या आपने नहीं खाना, ये मकसद नहीं है, मकसद है ओबीडियंस, सरेंडर योर विल। ये मेरा जी चाहता है, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनसे सुबह सवेरे नाश्ता भी नहीं किया जाता, ऐसा है ना, सुबह सवेरे को खिलाने लगे तो दिल नहीं चाहता, सहरी के वक्त खाया ही नहीं जाता, उस वक्त कहा खाओ, सहरी में बरकत है। सहरी वो नहीं है जो आप रात को खा के सो गए, वो सहरी नहीं है, सहरी वो है अफजल क्या है, सुन्नत क्या है कि जो बिल्कुल रोजा बंद होने से पहले आप खाते हैं, आप उस वक्त दिल नहीं चाह रहा आप उस वक्त खा रहे हैं, दोपहर को जब दिल चाह रहा है उस वक्त आप नहीं खा रहे, जब प्यास लगती है उस वक्त पीना नहीं है और सहरी के वक्त पीते जा रहे हैं, ये क्या है। इफ्तारी के वक्त दिल नहीं कर रहा आप खाने का, उस वक्त खा रहे हैं, जब दिल कर रहा था और जब भूख लगी हुई थी तब नहीं खाया। इससे पता चलता है ये सब एक्सरसाइज अल्लाह ताला करा रहे हैं कि सरेंडर योर विल, अपनी मर्जी नहीं अल्लाह की मर्जी। इस सबक को याद रखना है सिर्फ रमजान में नहीं, बाकी 11 महीने भी, कि मेरी मर्जी नहीं चलनी अल्लाह की मर्जी चलनी। वहां भी तो इतने केयरफुल हैं कि टाइम को देख रहे हैं, एक एक मिनट करके गिन रहे हैं और इस जरा आगे पीछे नहीं हो रहे, और बाकी जिंदगी में क्या है, बाकी जिंदगी में कोई परवाह नहीं, बाकी जिंदगी में ये पूछते हैं इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत है, पहले हमें ये सिखाएं। आपके नौकर अगर आपसे पूछे बाजी आज आपने इतना इतनी ग्रोसरी करने का कह दिया है, इतना काम करने का कह दिया, पहले मुझे बताएं कि इसकी आपने क्यों कहा है, तो आप क्या करेंगे, उसी वक्त फायर कर देंगे, निकाल देंगे उसको, ऐसे नौकर की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके जैसा इंसान है जो आपका नौकर है, हम तो अल्लाह के अब्द हैं, अब्द गुलाम हैं, हमारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और फिर भी हम अल्लाह से सवाल करते हैं क्यों, हम फिर भी अल्लाह से सवाल करते हैं इसकी लॉजिक क्या है, पहले हमें बताया जाए हुक्म हमें दिया क्यों गया है, हमें तो कुछ इसकी समझ नहीं आती। तो जब रमजान में रोजे रखो तो इस स्पिरिट के साथ रोजा रखो कि रोजा रख के मैं अल्लाह की ओबीडियंस सीख रही हूं, मैं ये सीख रही हूं मेरी मर्जी नहीं चलेगी अल्लाह की मर्जी चलेगी। 29-30 दिन हम ये एक्सरसाइज करते हैं, 29-30 दिन, इसके बावजूद हम ये सबक नहीं लर्न कर पाते, इसके बावजूद हमें ये बात नहीं समझ आती कि नहीं हुक्म चलेगा तो अल्लाह का चलेगा। आप देख लें सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बात थी ना उसको कोट किया, अल्लाह ताला ने फरमाया इद काला लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसको उसके रब ने मती हो जाओ, फरमा बरदार हो जाओ, काला अस्लम तुली रब्बिल आलमीन, तो उन्होंने क्या फरमाया, मैं रब्बिल आलमीन के आगे मती हो गया, कोई चूंचरा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई आगे से बात नहीं, बस मैं मुती फरमा बरदार हो गया। अल्लाह ताला को ऐसी फरमा बरदारी चाहिए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, कि अल्लाह के हर हुक्म पे इंसान मर मिटने वाला हो जाए, अल्लाह के हर हुक्म पे इंसान कहे कि अल्लाह मेरी ख्वाहिश क्या है, तूने कहा बंद कर दो खाना, मैंने बंद कर दिया, तूने कहा खा लो, मैंने खा लिया, तूने कहा रात को क्याम करो, मैंने कर लिया, तूने कहा पीना बंद कर दो, मैंने पीना बंद कर दिया, तूने कहा कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं हो, मैंने नहीं किया, ये सब क्या है, ये फरमा बरदारी का सबक है, इंसान इससे फरमा बरदारी सीखे, ये रोजे की स्पिरिट है, ये है वो तकवा जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान के अंदर डिवेलप हो, इंसान अल्लाह की मर्जी को जाने और फिर उसके मुताबिक चले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। अपनी मर्जियों के मुताबिक ना चले। फिर आप देखें ये महीना जिसको कहा गया कुरान का महीना, कुरान का महीना इसलिए कि यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और जितनी किताबें इल्हामी किताबें नाजिल हुई हैं वो सब रमज़ान में नाजिल हुई। यानी तौरात देख लें, जबूर देख लें, इंजील देख लें, ये सब रमज़ान में नाजिल हुई। इसका मतलब ये कोई स्पेशल ही महीना है। अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए बुलाया था तो उनसे भी रोज़े रखवाए थे 40 दिन के। आपको कुरान दिया तो आपको भी रोज़े रखवाए। ये वो महीना है जिसमें इंसानियत का रुख बदल गया, इसलिए कि पहली वही इसी में नाजिल हुई थी। इनकलाब आ गया जिससे वो लोग जो जहालत में थे उनकी जिंदगियां बदल गई, वो रदी अल्लाह अनहुम बन गए। कैसे अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत का एक रास्ता खोल दिया इस महीने में। आज हम जो मुसलमान हैं वो इस वजह से हैं कि इस महीने में पहली वही नाजिल हुई थी, इस महीने में कुरान उतरा था, इस वजह से आज हम मुसलमान हैं। ये इतना कीमती महीना है। तो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया इस महीने में, इसकी इब्तदा हुई, वही की इब्तदा इसी महीने से हुई है। इस वजह से ये कुरान का महीना है। यानी कुरान का महीना होने से मतलब क्या है कि सारे महीने में अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ो, सारे महीने में कोशिश करो कुरान के साथ कि इसको पढ़ो, इसको सीखो, इसको समझो, इसको पर अमल करो, इसको लोगों तक पहुंचाओ। ये कुरान की के हकूक में से हकूक हैं। आप देखें अभी हम बातें करते आ रहे थे रास्ते में कि ये बड़ी आजकल टिकट्स मिल रही हैं ना लोगों को रोड पे। तो जब कोई टिकट किसी को मिलती है और वो जाता है वहाँ पे करने के लिए, तो कोई वकील नहीं करता, ज़्यादातर छोटा मोटा केस है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर कोई बड़ा केस लग जाए, मसलन ऐसा कोई केस जिससे उसको डेथ सेंटेंस मिल सकती हो, जिससे उसको मौत की सज़ा मिल सकती हो, तो क्या करेगा? बड़ा वकील करेगा ना, इतना बड़ा वकील कि जिसकी बात में असर हो, जो मुकदमा सही से उसका पेश कर सके। क्यों? ज़िंदगी मौत का सवाल है ना। वो कहेगा कि अच्छे से अच्छा वकील करो, चाहे मुझे कितने भी पैसे देने पड़े। किस लिए? ताकि जान बच जाए, है ना। अल्लाह ताला की अदालत भी एक दिन लगने वाली है जिसमें हम सब को पेश होना है, और हमारे ऊपर मुकदमा सिर्फ ये नहीं होगा कि कहीं जान ना चली जाए, उस दिन इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। मौत से बचना मकसद नहीं होगा उस दिन, उस दिन तो ये होगा कि जहन्नुम से बच जाएं जो मौत से भी बदतर जगह है। उस दिन हर एक को वकील की ज़रूरत होगी, लेकिन इंसानों में से कोई वकील नहीं बनने वाला। अपने प्यारे भी छोड़ देंगे, अपने सके रिश्तेदार भी छोड़ देंगे। उस दिन किसी को ढूंढोगे भी, हाथ पकड़ के बुलाना चाहोगे भी तो नहीं आएगा। उस दिन हमें भी वकील चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो हमारी ऑपोजिट पार्टी होगी ना, उनके पास बेस्ट वकील होंगे, बेस्ट गवाह होंगे, बेस्ट शहादतें होंगी, उनके पास सब कुछ अच्छा होगा। हमारे पास ना कोई तर्जुमान होगा जो हमारी ट्रांसलेशन करे, ना कोई हमारे पास इंसानों में से वकील होगा। लेकिन कुछ लोग उस दिन अपने वकील साथ लाए होंगे। अगर उनसे पूछें आपको ये वकील कहाँ से मिले, तो वो बताएंगे हम दुनिया से इनको लेकर आए हैं। ये वकील कौन है? सबसे पहला एक वकील आपको बताऊं, जानना चाहेंगे, वो है कुरान। ये खड़ा होके अल्लाह की अदालत में सिफारिश करेगा, ये खड़ा होके अल्लाह ताला से कहेगा ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ये मेरे साथ वक्त गुजारती थी। आज हम कुरान देखते हैं ना तो हमें एक बुक लगती है। मैं कभी इसको देख के सोचती हूँ अल्लाह कैसे एक दिन ये खड़ा हो जाएगा, इसके पास आवाज़ होगी, ये बोलेगा, ये गवाही देगा, ये हमने इसके साथ वक्त गुजारा। रोज़े में हलक सूख जाए और इंसान कुरान पढ़ता जा रहा है तो ये कुरान देख रहा है इस बात को, ये विटनेस है, और ये वो वकील है, ये वो सिफारशी है जिसकी सिफारिश सुनी जाएगी और कबूल की जाएगी। कई तो सिफारशी ऐसे होते हैं ना आगे कुछ कहते भी रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई से ही नहीं होती। ये वो है सिफारशी जिसकी से है अल्लाह की अदालत के अंदर। ये उस दिन कहेगा कि मेरी वजह से तुम प्यासे रहे, मेरी वजह से तुम रातों को जागते रहे, आज मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। जब इंसान खुद थर थर कांप रहा होगा, उससे खुद तो बोला नहीं जाएगा। हमें तो कोई पुलिस वाला रोक ले तो हमारी आवाज बंद हो जाती है। अल्लाह की अदालत में हम कहां से बोलने के काबिल होंगे। उस दिन ये वकील खड़ा होके कहेगा, ए अल्लाह इसको बख्श दे। ये हदीस में आता है झगड़ेगा, ये नहीं अल्लाह इसको बख्श ही दे, नहीं अल्लाह इसको बख्श ही दे। जब तक अल्लाह के पास बख्शवा ना ले ये नहीं खामोश होगा। ये कैसा प्यारा साथी है, इसको अपना साथी बनाओ ताकि ये उस दिन हमारे बिहाफ पे खड़ा हो जाए। उस दिन जब सब साथ छोड़ जाएंगे, उस दिन ये साथ नहीं छोड़ेगा, उस दिन आपका बेहतरीन दोस्त ये साबित होगा। जिस दिन प्यारे पक्के सच्चे बेस्ट फ्रेंड्स भी साथ छोड़ जाएं, उस दिन कुरान खड़ा हो जाएगा। इसी के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सिफारशी है जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, जिसका दावा तस्लीम किया जाएगा, दावा करेगा अल्लाह के पास। जिसने इसको आगे रखा, क्या मतलब, इमाम बनाया इसको, इसको फॉलो की, इमाम होते हैं ना, आप उनको फॉलो करते हैं, वो समी अल्लाह लिमन हमीदा कहें, वो अल्लाह अकबर कहें, आप जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे करते हैं। इमाम बनाए कुरान को, यानी कुरान जैसे जैसे कह रहा है वैसे चलते गए, तो क्या होगा, वो इसको जन्नत की तरफ खींच ले जाएगा। और जिसने इसे पसे पुश्त डाल दिया, रमज़ान के रमज़ान मुश्किल से खुला और उसके बाद बंद है, कभी खोला याद आ गया, कोई फौत हो गया तो खोल लिया, घर खरीद लिया तो खोल लिया, बस इतना ही अगर ताल्लुक है, तो फरमाया, देखें ये मामूली बात नहीं है कि हम पूछते हैं फ़र्ज़ है क्या, ये पढ़ना फ़र्ज़ है क्या। अब ये हदीस से देख लें अगर आपको लगता है कि फ़र्ज़ है कि नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं ना कि हमें बताए, नहीं नहीं फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कुरान तो उसमें है ही नहीं, लेकिन ये इस हदीस का क्या करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इसको पसे पुश डाल दिया ये इसको दोजख में गिरा देगा। कुरान अल्लाह से झगड़ा करेगा कि बंदे के दर्जे बुलंद करे, जिन लोगों ने इसको अपना साथी बनाया होगा और इसको बख्शवाने के लिए, अबू मूसा अशरी फरमाते हैं यकीन जानो ये कुरान तुम्हारे लिए अजर भी बन सकता है और अजाब का जरिया भी बन सकता है। तुम कुरान की ताबेदारी करो और ऐसा ना करो कि कुरान तुम्हारा मुखालिफ बन जाए और तुम्हारे पीछे लग जाए, क्योंकि जिसके पीछे ये लग जाता है, इसके पीछे पड़ जाता है, उसको गुद्दी से पकड़ कर जहन्नुम में गिरा देगा। अब बताएं इसके बाद के कुरान पढ़ना फ़र्ज है, और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, रमज़ान तो है ही खैर कुरान का महीना, बाकी 11 महीने क्या फ़र्ज है। इस हदीस के मुताबिक तो कुरान का साथ होना ज़रूरी है, इसको अपना कंपेनियन बनाएं, साथी, जैसे हम साथी के साथ हमेशा रहते हैं, हम कहते हैं मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथी कहा जाता है, राइट, क्योंकि वो साथ रहते हैं। कुरान को साथी बना लीजिए। सल्फ सालेहीन कहते हैं कि जिसने रमज़ान में एक बार भी कुरान मुकम्मल, कवर टू कवर नहीं मुकम्मल किया, पढ़ा नहीं, वो अपने बारे में निफाक का शुबा करे, फिर निफाक का शुबा करे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, अब क्या करें हमारी तो स्पीड ही स्लो है तो हम तो नहीं कर सकते। अगर स्पीड स्लो है तो आप पहले से शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं आप जिस दिन पहला रोज़ा होगा तभी खोलेंगे, अभी से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत चांस है कि आपका रमज़ान में कुरान करीम मुकम्मल हो जाए। ये तो वैसे ही शाबान है, शाबान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महीना ऐसा है कि जो रजब और रमज़ान के दरमियान है, उस महीने से लोग बहुत गाफिल रहते हैं, बहुत गाफिल रहते हैं, लेकिन लोग उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन ये वो महीना है जिसमें के ईयरली जो आपका रिपोर्ट है ना वो अल्लाह ताला के पास पेश होती है। जैसे मंडे एंड थर्सडे को हमारी एक रिपोर्ट अल्लाह ताला के पास जाती है, वीक में दो टू डेज हैं, ईयरली रिपोर्ट जो है वो शाबान में जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह के सामने मेरी आमालनामा पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा शाबान में रोज़े रखते थे। इसलिए हम इस महीने में रोजे रखें, इस महीने में कुरान को खोलें। ये वार्म अप का महीना है, वार्म अप करते ना आप, आपने दौड़ लगानी है तो पहले वार्म अप करते हैं, एकदम तो नहीं दौड़ना शुरू कर देते। हम वार्म अप कब शुरू करते हैं? रमजान के पहले रोजे पे। अब वो वार्म अप ही होता रहेगा तो फिर 10-15 दिन तो वार्म अप रहेगा, उसके बाद कहीं जाके जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो रमजान ही खत्म हो जाएगा। तो वार्म अप अभी से करना है, इस महीने से करना है। इस महीने से कुरान को खोलें, इस महीने से रोजे ज्यादा रखें, कोशिश करें कि इस महीने में अपने आप को तैयार कर लें रमजान के लिए। यानी ऐसे समझ लें कि आपने बीज डाल दिया है, अब उस वक्त फसल काटने का टाइम हो। अगर बीज भी डालना उसी वक्त चाहते हैं, पानी भी देना रमजान में ही चाहते हैं, और फसल काटना भी रमजान में चाहते हैं, तो कैसे होगा ये? रजब में बीज डालें, शाबान में पानी दें, और रमजान में खेती को काटें। इसलिए ये महीना ऐसा है कि इसकी भी हम कदर जानें, शाबान की, और इसके अंदर भी अपने आप को ऐसे सिर्फ अपने फ्रीजरों को तैयार नहीं करें, बल्कि अपने आप को भी तैयार करें कि रमज़ान के लिए मेरी ये तैयारी हो कि मैं किस तरह से रमज़ान को शुरू करना चाहती हूँ। उसकी प्लानिंग कीजिए, अभी से उसकी रिहर्सल करें, वरना शुरू के कुछ दिन क्या होंगे, सर में दर्द होता रहेगा रोज़ा रख के। अब रोज़ा रखने की जो आदत नहीं थी पूरा साल, तो कुछ दिन तो बस इसी चीज़ के अंदर गुजर जाएंगे कि सर बांधे लेटे रहेंगे, है ना। तो इसलिए अभी से अगर आपने किया होगा तो आप थोड़ा उसमें आ जाएंगे, थोड़ी अपनी रूटीन के अंदर। फिर इंशाल्लाह ताला जिस वक्त आप रमज़ान शुरू करेंगे तो आपका रमज़ान ऐसे होगा कि आप पहले से तैयार हैं और फौरन दौड़ लगा देंगे। देखें, अल्लाह ताला ने जो ये कुरान करीम हमें अता फरमाया, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम कुरान पढ़ के भी और समझते हैं कि हमने ख़त्म कर लिया, अब ख़त्म पे एक और ख़त्म कर लिया तो हमने इसका हक अदा कर दिया। नहीं, अगर हम रमज़ान में एंटर होते हैं और उससे एग्जिट करते हैं सेम हालत में, हमने कुछ नहीं पाया। बिकॉज ये मंथ है चेंज का, ये मंथ है अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन रिफ्रेश करने का। जो कनेक्शन थोड़ा, ये नहीं मैं आपको कहती कि 11 महीने हमने अल्लाह को याद ही नहीं किया, नमाज भी पढ़ते हैं सब लोग और भी काम करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाता। ये महीना है जिसके अंदर हम यानी रिफ्रेश करेंगे उस ताल्लुक को, दोबारा वहां पे नाता जोड़ेंगे। क्योंकि हदीस में आता है जिसका रमजान सलामती के साथ गुजरा उसका पूरा साल सलामती के साथ गुजरता है। यानी पूरा साल जैसा आपका रमजान होगा ना, वैसा पूरा साल होगा। अगर रमजान आपने अच्छा गुजारा और अल्लाह की इबादत सही से करके गुजारी, तो आप देखेंगे पूरा साल के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा। नई कोई आपने हैबिट शुरू करनी है ना, रमजान से करें, आप देखेंगे को उसका इफेक्ट रहेगा। जैसे कि कोई भी नई चीज़ आपने शुरू करनी हो तो कम से कम एक आध हफ्ता तो लगता है उसको रूटीन बनने में, 8-10 दिन तो लगते हैं, लेकिन 30 दिन अल्लाह ताला आपको देता है। 30 दिन तक आप बार 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 उस चीज़ को करते हैं तो आपकी थोड़ी आदत बन जाती है, फिर बाकी दिन उसको कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। जैसे आप देखते हैं रमज़ान ख़त्म होता है तो उसके बाद भी सहरी के टाइम पर थोड़ी देर कुछ दिन तक आँख खुलती रहती है, क्योंकि 30 दिन तक आपने उस वक़्त जाग के गुजारा। इसलिए बड़ा आसान होता है आगे भी लेकर चलना। तो जो चाहता है कि मैं अपना पूरा साल अच्छा गुजारूं, वो अपनी बैटरी को चार्ज कर ले इस महीने में। यानी जैसे हम फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं, रात को लगा देते हैं सुबह 100% हो, हमारी भी बैटरीज चार्ज होती हैं रमज़ान में। हम भी अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं पूरा साल सही से गुजारने के लिए। और अल्लाह ताला ने कितना अच्छा मौका दे दिया, शैतान को भी बंद कर दिया ताकि वो भी ना सताए, और एक नफ्स ही है जिसके ऊपर काबू पाना है। एक ऐसा सीज़न रख दिया अल्लाह ताला ने कि लालच भी दे दिया कि आ जाओ मेरी तरफ। आप ना उनको पूछें, अगर कोई जो जिनके बिजनेसेस होते हैं, कोई दुकान हो या कुछ, आप उनसे अगर पूछें बेगमात से उनकी कि भाई क्या बात है, आपके हस्बैंड आजकल बहुत देर से आ रहे हैं, कहते नहीं आजकल असल में सीज़न है ना, ईद का सीज़न है या इसका, तो पूरी पूरी रात दुकान खुली रहती है। देखते हैं आप हमारे मुल्कों में ईद वगैरह पे, यहाँ पे भी क्रिसमस वगैरह पे ये मॉल के आवर्स क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं कि कम कर देते हैं? बढ़ा देते हैं ना, लेट बंद होता है। क्यों? उनको पता है कि इस वक्त ग्राहक आएगा, खरीदेगा, कुछ ज़्यादा बिक्री होगी। इसलिए हम भी एक दुकान खोले बैठे हैं और जो ख़रीदार है वो हमारा रब है। इस वक्त जैसे दुकानदार होता है ना, उसको पता होता है सीज़न जब होगा तो उसकी निकम्मी चीज़ें भी बिक जानी है, निकल ही जाती है, मुंह मांगे दाम निकलती हैं चीज़ें, जो प्राइस रख लेता चली जाती है। ना, वो इतनी प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं, हमारे मुल्कों में तो ये हाल है ना, प्राइसेस बढ़ा देते हैं कि अब तो चली ही जाएगी, और वाकई इतना हुजूम होता है, बिक्री होती है उनकी, जो हमारे पास भी निकम्मे निकम्मे ये रोज़े हैं, निकम्मी हमारी नमाजें हैं, हमारी क्या तिलावतें हैं, अल्लाह पाक वो ख़रीदार है कि रमज़ान में ये निकम्मी चीज़ें भी वो ख़रीद लेता है और बड़े बड़े भाव देता है, इसके बड़ा कुछ देता है। लेकिन अगर हम अपनी दुकान जल्दी बंद करके सोए रहें, हमें आवर्स क्या बढ़ाने चाहिए या कम कर देने चाहिए? बढ़ाने चाहिए ना, हम अपनी इबादत को और बढ़ा दें, अपने शौक़ को और बढ़ा दें, अल्लाह ताला को दिखाएं अपना तकवा, अपना शौक़। उल्टा क्या होता है, हम सो सो के गुजारते रहते हैं सारा दिन, बस रोज़ा रख लिया बस सो गए। ये सोने का महीना नहीं है, ये तो जागने का महीना है, ये तो वो महीना है जिसमें ख़रीदार तैयार है लेने के लिए, हम सोए पड़े रहें। अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया, वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ, इंसान के लिए सिर्फ वो ही है जितनी वो कोशिश करता है, वह इन्ना सायहु सौफा युरा, और उसकी कोशिश देखी जाती है, अल्लाह ताला नोट करता है हमारी कोशिशों को। कैसे नोट होती है हमारी कोशिश? देखिए अल्लाह ताला देखता है कि जिस वक्त मसलन कोई शादी का मौका होता है हमारे घरों में तो क्या हाल होता है, रात रात तक भी आप जागे में हैं, शॉपिंग्स हैं कि वो ख़त्म नहीं हो रही, इतनी मेहनत हो रही है, थक थक के भी नहीं थकते, कोई कहता ना थक गई होगी बैठ जा, नहीं नहीं मैं तो नहीं थकी, फिर काम शुरू कर देते। जब तक शादी का दिन ना गुजर जाए हम आराम से नहीं बैठते। अल्लाह ताला देखता है कि शादियों के लिए कितना शौक, फिर अल्लाह देखता है कि जब हमारे इम्तिहान होते हैं, कभी इम्तिहानों का टाइम याद करें, जब हमारे इम्तिहान होते थे कैसे हम रातों को भी जाग जाग के पढ़ते थे, जब तक पेपर नहीं हो जाता ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना कहीं जाने का होश, कितनी मेहनत की ना। अच्छा फिर जब दावतें होती हैं हमारे घर में, बड़ी दावत हो जाए तो हम खड़े में खाने पका रहे हैं, खड़े खड़े भी किचन के अंदर पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन मेहनत में लगे हुए। अल्लाह ताला देखता है दावतों के लिए भी मेहनतें, शादियों के लिए भी रत जगे, इम्तिहानों के लिए भी हर चीज़ का होश भूल जाते हो। एक मैंने अपना महीना दिया, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई मेहनत नहीं दिखानी, अल्लाह तो तुम्हारी मेहनतें देखता है, तुम्हारी कोशिशें देखता है, तुम इसमें कोई कोशिश नहीं करोगे तो अल्लाह देखता है कि किस वक्त में क्या करते हो। और जब मेरा महीना आया, जब मैंने इबादत का महीना बना दिया तो उसमें नहीं तुम्हारी वैसी कोशिश होगी। तो अल्लाह ताला को अपनी कोशिशें दिखाएं, अल्लाह को ये दिखाएं कि मैं सीरियस हूँ कि मेरी बख्शिश हो जाए, अल्लाह को ये दिखाएं कि मैं जहन्नुम से आज़ादी चाहती हूँ, अल्लाह को ये दिखाएं कि अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, कितना इसको शौक है, भागी फिर रही है, कितनी कोशिश कर रही है, कितनी रत जगे कर रही है, नींद नहीं पूरी हो रही फिर भी लगी हुई है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला तो मिसकाला जर्रातिन, जर्रे के बराबर भी जो अमल है उसको भी जानता है, और वो भी नोट हो रहा है, वो भी लिखा जा रहा है। तो हमारा रात को जागना ना लिखा जाएगा, हाँ हमारा अल्लाह के लिए खड़े होना कि हम थक भी गए हैं तो खड़े हुए हैं, क्या ये ना लिखा जाएगा कि अल्लाह ना देख रहा होगा, हमें प्यास लगी हुई है, अलग खुश्क हो रहा है फिर भी अल्लाह की खातिर रोज़ा रखा हुआ है, क्या अल्लाह ना इसको अप्रिशिएट करेगा? वो तो अशकूर है, वो तो कदरदान है, उससे ज़्यादा तो कदरदानी कोई कर ही नहीं सकता आपके आमाल की। उस कदरदान को दिखाइए, दिखाएं, कोशिश तो करें। हम कहते हैं हमसे नहीं होता, हम बड़े कमज़ोर हैं, वो दिखाओ तो सही, कोशिश तो करो, अल्लाह तो तुम्हारी भाग दौड़ पे ही खुश हो जाता है ना। हमारी कौन सी ऐसी कोशिशें हैं, कोई ऐसी बड़ी कोशिशें नहीं, लेकिन अल्लाह देखता है, देखो इसको शौक कितना है, इसके अंदर जज्बा कितना है, ये कितना ज़्यादा चाहती है। इसलिए अल्लाह ताला को अपना शौक दिखाएं, और इसके लिए एक दुआ को लाजमी पकड़ लें अभी से, और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादते। ये दुआ सबको आती होगी, लेकिन अब क्या है, इसको शहूर के साथ मांगना है कि अल्लाह रमज़ान आ रहा है, मेरी जो है अपनी तो कोई ताकत नहीं है, अल्लाह मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, मेरी कहाँ हिम्मत है, अल्लाह जब तक तू ना मदद फरमाए, जब तक तू तौफीक ना दे, तो ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमाना ज़िक्र पे, अपने शुक्रगुजारी पे और अच्छी इबादत करने पे जो तुझे पसंद आ जाए। ये यानी अभी से ये दुआ करें ताकि रमज़ान में हम अच्छी तरह से इबादत कर सकें। ویسے تو ہم نماز کے بعد یہ کرتے ہی ہیں، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کے کریں کہ رمضان میں اللہ لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے، اچھی عبادت بھی نصیب ہو جائے، کیونکہ کیا پتہ ہے کہ اگلا رمضان آئے کہ نہیں آئے، کیا پتہ ہے اگلا رمضان آئے بھی تو کس حالت میں آئے۔ لاسٹ ایئر یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ میں درس دوں گی رمضان کا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گی، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اسکیجول کر کے بھی، پرومس کر کے بھی، اس کے بعد بھی کر بھی سکیں کہ نہیں کر سکیں ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ضروری ہے، وہ توفیق دے گا تو ہم ہل سکیں گے، اس کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایون اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفتح، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہماری کہاں طاقت ہے؟ ہاں میری اندر ہمت ہے، میں صحیح ہوں، میں چل کے بھی آئی ہوں، لیکن اللہ نماز کے لیے کھڑا کرنا یہ تو توفیق دے گا تو ہو سکتا ہے میں نہیں کر سکتی، اللہ مجھے تیری مدد چاہیے۔ اس لیے چاہے روزہ ہے، ابھی سے اگر ہماری نیت ہے بھی کہ ہم روزے رکھیں، پھر بھی مانگی اللہ سے توفیق، اللہ تو نے توفیق دینی ہے روزے رکھنے کی، اللہ تو نے توفیق دینی ہے عبادت کی اور اچھی عبادت کی، اللہ لیلۃ القدر کی بھی تو نے توفیق دینی ہے کہ میں عبادت کر سکوں۔ تو اس لیے ابھی سے یہ دعائیں مانگیں اور ابھی سے اپنے آپ کو یہ تیار کریں اور یہ سوچ کے اپنے آپ کو تیار کریں، پتہ نہیں اگلا رمضان کیسا آتا ہے، کہاں آتا ہے، زمین کے اوپر آتا ہے کہ زمین کے نیچے آتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھی عبادت کروا لینا، اللہ مجھ سے حق ادا کروا لینا، یہ دعائیں کریں۔ دیکھیں حضرت حسن بصری جو تھے وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہنس کھیل کر رہے ہیں، رمضان تھا، تو ان کے پاس جا کے کہنے لگے ابھی تو دوڑ کا وقت ہے، ابھی تو دوڑ لگی ہوئی ہے، تم کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ کیا تم جیت گئے ہو تو ہنس رہے ہو، یا تم ہار گئے ہو اگر تو تب کھڑے ہوئے ہو اور فارغ کھڑے ہوئے ہو، تو ہارنے پہ تو ویسے ہی نہیں آپ کچھ خوشی منا سکتے، اور ہنس کس بات پہ رہے ہو تمہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا کیا بنا، تم اس دوڑ میں جیتے بھی کہ یا نہیں جیتے۔ اس لیے رمضان ٹائم ویسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان میں ہر اس ڈسٹریکشن کو اپنے سے دور کریں، ہر اس ٹائم ویسٹنگ چیز کو اپنے سے دور کریں جو آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر لیں، جو ٹائم کنزیومنگ ہو۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ ہمارا یہ دشمن ہمارا فون ہے۔ اب میرے بچوں نے تو مجھے بتا دیا کہ ماما اپنے جب چیک کرنا ہو نا کہ آپ کتنی دیر فون پہ رہی ہیں، تو یہ اب یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کتنی دیر فون پہ رہی ہیں نا، اب وہ بھی آورز بھی بتاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھ لیے گا، آپ کا فون بھی بتاتا ہوگا کتنے گھنٹے آپ فون پہ رہیں۔ اب رمضان میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کتنی گھنٹے رہے، انلیس کے اس کے اوپر آپ دورہ قرآن سنتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آپ سن رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ٹیکسٹنگ یا شیئرنگ، خدا کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے کہ جو شیئرنگ ہے نا پورا سال آپ کرتے رہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں آپ شیئر کرتے ہیں، ضروری نہیں رمضان میں آپ نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، ان کو بھی دورہ قرآن کرنے دیں، ان کو بھی قرآن سے کوئی تلاوت کرنے دیں۔ اب اس وقت نیکی کے کام ہم ان کو بتائیں گے اب ایسے کر لو یہ کر لو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ان کو موقع دیں کہ وہ جو 11 مہینے انہوں نے سیکھا اب اس کو اپلائی کریں۔ وہ ویڈیوز اتنی لمبی لمبی، اب اس کو کون سنے؟ وہ کوئی چیز بھیج دیتا ہے، کوئی چیز پڑھنے کی بھیج دیتا ہے، اتنی لمبی لمبی باتیں وہ کون اب پڑھے گا؟ کوئی شیئر کر رہا ہے اور دوسروں کے فون پہ مسلسل ایک ٹنگ ٹنگ بیل چل رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو تب ٹنگ ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو تب، اب فوراً ہوتا ہے پتہ نہیں کسی نے کیا میسج بھیج دیا، جلدی سے اب دیکھوں تو صحیح۔ جب حیا علی الصلاح ہوتی ہے تب ہم اللہ کی آواز پہ ایسے لبیک نہیں کہتے جیسے فون کی آواز پہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ دیا، کون سا ایسے ہمارے لاکھوں کروڑوں کے جو ہمارے ڈیلز ہیں وہ جا رہی ہیں جو ہم نے فوراً دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے برا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں بچے بڑے ایڈکٹڈ ہیں، میں کہتی ہوں ہم کوئی کم ہے؟ اپنے گرمان میں تو جھانکے، بچے تو ہمیں دیکھ کے ہی وہ کرتے ہیں نا، بلیو میں ہم سب کا ایک ہی حال ہے، اس لیے بچوں کو دوش نہ دیں ان بیچاروں کے، گزروں نے تو آنکھ کھولتے ہی یہی دیکھا، ہم تو اتنے بڑے ہو گئے تب ہم نے یہ فون دیکھے، تب بھی ہماری عادت نہیں ختم ہو رہی، تب بھی ہم ایڈکٹ ہیں۔ وہ اس فون کو اپنے سے دور رکھیں، کوشش کیجئے کم سے کم ٹائم فون کو دیں، کوئی ارجنٹ بات ہی ہو تو فون پہ کریں، کسی کو کہہ دیں مجھے ارجنٹ چیز ہو تو کال کر لینا، اور مجھے تو میں ابھی سے بتا دوں کوئی میسج نہ کرے کوئی میسج نہ کرے، کیونکہ کیا ہے یہ مہینہ قیمتی ہے نا، بہت قیمتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ ہر سال کیا ہوتا ہے، ابھی رمضان شروع ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، اور جب ختم ہونے لگتا ہے ہائے 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 رمضان گزر بھی گیا ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے۔ हर रमजान में ऐसा ही होता है ना, तो कभी तो हम ऐसा करें कि डिस्ट्रैक्शंस को पीछे कर दें और अपने रमजान को वाकई अल्लाह के साथ जुड़ने का महीना बनाए, ना कि लोगों के साथ जुड़ने का। लोगों के साथ तो हम सारे 11 महीने जुड़े ही रहते हैं, अल्लाह के साथ जुड़ने का महीना है। अब क्या होगा कि जब आपने फोन उठाया और एक टेक्स्ट पढ़ा ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। साइंस कहती है इट टेक्स यू 15 मिनट्स टू कम बैक। आप अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, अब मिसाल के तौर पर लेक्चर देते ही कोई किसी का फोन आ गया, अब अगर मैं वो उठा के उसका टेक्स्ट पढ़ने लगूंगी मेरा दिमाग कहीं और चला जाएगा। अब जितनी देर मैं वापस अपने आप को इस माहौल में लाऊंगी 15 मिनट लगेंगे उसमें। क्या हमारी बातें होंगी और क्या हमारे कुरान पढ़ने होंगे। क्यों वो कहते हैं, इमाम शाफी कहते हैं कि मैं मक्का से मदीना गया और मदीना से वापस आया और मुझे 16 दिन लगे और इसमें पता नहीं कितने, हाँ उन्होंने बताया कि मैंने कुरान ख़त्म कर लिए 16 दिनों में, कितने सारे मोर देन 10 थे, कितने सारे मैंने कुरान ख़त्म कर लिए। कैसे हम सोचते हैं वो कैसे कर लेते थे, हमसे तो एक ख़त्म करना मुश्किल है। तो वो ऐसे ख़त्म करते थे कि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी, उनके पास ये चीज़ें नहीं थी जिन्होंने हमारा सारा टाइम ले लिया। फ़ोन ने खड़ा होकर सिफारशी नहीं बनना, किसने बनना है? कुरान ने। दूसरा किसने सिफारिश करनी है वहाँ पे, किसने वकील बनना है? रोज़े ने। रोज़ा भी खड़ा होकर वकालत करेगा, रोज़ा कहेगा अल्लाह मैंने इसको भूखा प्यासा रखा था, ए अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला उसकी भी सिफारिश सुनेंगे। रोज़ा भी खड़ा होगा वहाँ पे, उसको भी अल्लाह ताला एक शक्ल देंगे। तो हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए, वीक या स्ट्रॉन्ग? आप वकील जब ज़िंदगी मौत का मसला हो तो कैसा वकील करेंगे, जो बिल्कुल ऐसे ही गया गुजरा होगा, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा वकील करेंगे, बड़ा मजबूत ना? तो हमारे रोज़े और हमारा कुरान कैसा होना चाहिए, मजबूत। उसको मजबूत कैसे बनाएंगे, जब हमारा रोज़ा भी वाकई ऐसा रोज़ा होगा जो हक अदा हमने किया होगा, उसमें गुनाहों से बचे होंगे, ईमान और एहतसाब, ईमान भी होगा और उसके अंदर सवाब की नियत भी होगी और उसके अंदर अपने आप को खुराफात से भी बचाया होगा, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन से, बुराई बोलने से, झूठ बोलने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार को चाहिए कि ना वो बेहूदा बात करे ना कोई फोहिश बात करे। बेहूदा बातों में क्या आ जाता है, गालम गलोच भी आ जाती है, बुरी बातें भी आ जाती हैं, गुस्से की बातें भी आ जाती हैं, गीबत की बातें भी आ जाती हैं, झूठ भी आ जाता है, ये सब है। क्या हमारे रोज़े फिर ऐसे हैं? ये क्या सिर्फ खाने पीने का रोज़ा होता है या पूरे जिस्म का रोज़ा होता है? पूरे जिस्म का होता है ना, पूरे बॉडी पार्ट्स को रोज़ा रखना है। अब जब पूरे बॉडी पार्ट्स रोज़ा रखेंगे तो वो फिर वो रोज़ा होगा कि वहाँ पे मजबूती से खड़ा होकर अल्लाह के सामने सिफारिश करे। और अगर रोज़ा ही हमारा लड़खड़ाता हुआ खड़ा होगा, क्योंकि रोज़ा ही ऐसा रखा था, लड़खड़ाता हुआ होगा, तो वो क्या सिफारिश करेगा हमारी? इसलिए अपने रोज़ों का बहुत ख्याल करें, समझें कि ये बड़ी डेलिकेट चीज़ है, इसको मैंने बड़ा संभाल के रखना है। ये रोज़ा वो है कि जिसको मैंने, जैसे आप कहते हैं ना हैंडल विद केयर, कोई चीज़ होती है ना नाजुक होती है, हम कहते हैं हैंडल विद केयर। रोज़े को भी सारा दिन जहन में रहना चाहिए हैंडल विद केयर, ये रोज़ा है, ख़राब ना हो जाए कहीं। जितनी उसके अंदर बेहुदा बातें करेंगे, बुरी बातें करेंगे, गुनाह के काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो रोज़ा क्या होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। उतना वो रोज़ा नहीं होगा जो आपके लिए इतनी ताकत रखता हो कि उठ के खड़ा हो जाए। देखें तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गारंटीड है उनके ऊपर, करीब कर लो, गारंटीड है उनके ऊपर कि इनके ऊपर बख्शिश हो जाएगी, गारंटीड। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें कोई चीज़ तो इसका मतलब है फिर हमें तो यकीन करना चाहिए। और वो तीनों चीज़ें रमज़ान में ही हैं, तीनों चीज़ें रमज़ान में हैं। क्या है, एक चीज़ पहली क्या है, मन सौम रमदान ईमान व एहतसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतसाब के साथ, यानी ईमान था उसका अल्लाह के ऊपर और तमाम ईमानियात मुकम्मल है और सवाब की नीयत से, अल्लाह ताला उसके पास्ट के सारे गुनाह माफ़ कर देता है, ठीक है। दूसरी किस चीज़ पे गारंटी दी, मन कामा, जो क़याम करेगा रमज़ान में। देखें ये दोनों चीज़ें रमज़ान से मुतल्लिक हैं, जो क़याम करेगा रमज़ान में ईमान और एहतसाब के साथ, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। कौन बता रहा है ये बात, नबी अलैहिस्सलाम। फिर तीसरी चीज़, जो लैलतुल क़द्र में इबादत करेगा अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। देखो तीनों चीज़ें ही रमज़ान के अंदर हैं, कितना बड़ा मौका है हमारे लिए कि हमारी ज़िंदगी के सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। देखें, आप ना, हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको हम बड़े दिनों के बाद जब फ़ोन करते हैं तो फिर क्या होता है, किसी ने अगर किया हो तो फिर क्या होता है, पहले 10-15 मिनट हमें ये सुनने को मिलते हैं, अच्छा याद आ गया, अच्छा याद आ गया, अब फ़ोन करना याद आ गया, कोई काम होगा जो फ़ोन किया होगा, इतनी देर पहले वो हमें सुनाते हैं, फिर उसके बाद कहीं बात करने की मौका मिलता है। अल्लाह ताला को जब आप रमज़ान में पुकारते हैं ना, चाहे सारा साल नहीं उसके साथ अगर कनेक्शन बनाया, तब भी अगर रमज़ान में उसको पुकारोगे तो वो ये नहीं कहेगा पूरा साल तो याद नहीं आया अब आ गए हो, वो ये नहीं कहता, वो कहता है अब भी आ गए तो आ जाओ, अब जाना नहीं। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं 1000 तुझसे बाईद हूँ, ये अजब कि तू मेरे पास है, मैं तो तेरे से दूर चला जाता हूँ लेकिन तू मेरे करीब ही रहता है, तू तो हमेशा ही शाहरख से करीब है, ये मेरी ही गफलत होती कि मैं दूर चला जाता हूँ, अल्लाह दूर नहीं जाता, वो तो फिर भी बुलाता ही रहता है। अब इंसान भी इस महीने में दिखाए कि अल्लाह मैं भी तेरी तरफ पलट आया, मैं भी वापस आ गया, मैं भूल गया था अल्लाह तूने याद करा दिया। तो इस महीने को शऊर के साथ गुजारिए, ये रमज़ान है, ये ऐसे ना हो कि जैसे हम कोई मैच टीवी पे देखते हैं तो मैच किसी ने खेला और हमने बस देखा और ख़त्म हो गया, नहीं, रमज़ान को आता हुआ और जाता हुआ नहीं देखें, बल्कि हम उनमें हों जो शऊर के साथ इस महीने को ऐसे गुजारें कि वाकई इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हो, हम महसूस करें कि हमने वाकई एक ऐसा महीना गुजारा है, जब हम इसे निकलें तो वाकई हमें महसूस हो कि हमने कुछ अकम्प्लिश किया है, कुछ मेहनत की है। वरना बहुत सारे लोग हैं रमज़ान आते हैं और चले जाते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाते, अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है वो लेने वाले नहीं बनते। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ा रख के भी सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ उनका अल्लाह के यहाँ कोई रोज़ा नहीं है, भूख और प्यास है, भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं, यानी उनका रोज़ा है ही नहीं, उनका रोज़ा रख के भी वो वही काम कर रहे हैं जो रोज़े के बगैर करते थे। तो रोज़े में जैसे असलाफ फरमाते हैं, सहाबा फरमाते थे कि तुम्हारे रोज़े का दिन और बग़ैर रोज़े का दिन डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, रोज़े में भी वही काम कर रहे हो, उसके अलावा भी वही काम कर रहे हो, वही टीवी चल रहे हैं, वही वो फेसबुक पे बैठे हुए हैं, वही इन पे बैठे हुए हैं, जब सब वही काम करने हैं तो फिर रोज़े का क्या है। हम तो इसके अंदर भी हमारा ये होता है कि बस जल्दी जल्दी, बस हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, हमें कोई ज़्यादा किसी चीज़ की भी मेहनत ना करनी पड़े, इवन क़याम में भी हमें ज़्यादा ना खड़ा होना पड़े, ऐसी मस्जिद में जाओ जहाँ पे जल्दी तरावी ख़त्म हो जाए और हम आके आराम से बैठ के घर में फिर टीवी देखें और फिर फ़ोन पे हों और फिर इन चीज़ों पे हों, हमारा तो ये हाल हो गया। तो इसलिए इसको शऊर के साथ गुजारिए, जितना प्यारा अल्लाह ने महीना दिया उसको उतने प्यार से लें और उसका इस्तकबाल करें, उसको आगे बढ़ के वेलकम करें कि जैसे कि आप तैयार हैं और आप इंतज़ार में थे, जैसे कुछ मेहमान होते हैं ना घर में आते हैं, कुछ तो हमें मेहमान बड़े प्यारे होते हैं, मसलन हमारे कई बहन भाई हो गए, हमारे माँ बाप हो गए, जब वो आते हैं तो कितनी खुशी होती है, खुशी के मारे कई दिन नींद ही नहीं आती, जब वो आ भी जाते हैं तो फिर क्या दिन भर भी बातें करके जी नहीं भरता, रात रात तक हम जागे रहते हैं ना, बहुत देर हो जाती है, कभी फजर हो जाती है, कहते हैं रात का पता ही नहीं चला बातें करते, भी नींद भी नहीं आती, फिर वो प्यारे मेहमान हैं, कई मेहमान बड़े हमें अच्छे नहीं लगते, तो फिर जब वो आते हैं तो फिर हमारा बड़ा होता है कि अच्छा ये आ गए कब जाएंगे ये, तो रमज़ान वो मेहमान नहीं होना चाहिए जिसका हम ये करें कि कब जाएगा ख़त्म कब होगा, ये वो मेहमान होना चाहिए जिसको हम वेलकम करें तो शौक़ के साथ, ऐसे कि पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो आए मेहमान तो उसके बाद उसके साथ भी रातों को गुजारें, वक्त रात को जा के गुजारें, हमें अपने प्यारे इतने वो होते हैं अज़ीज़ कि हम उनके लिए नींद की कुर्बानी दे सकते हैं, अल्लाह ने प्यारा महीना भेजा है अपना, उसके लिए नींद की कुर्बानी क्या नहीं देंगे कि वो वापस जाए तो अल्लाह को रिपोर्ट दे कि अल्लाह मेरे साथ इसने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, इसके घर में मुझे बड़ा अच्छा मज़ा आया, इसने मुझे बड़ा वेलकम किया, ऐसा होना चाहिए ये महीना। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रमज़ान को इस तरह से गुजारें कि वाकई इसका हक़ अदा करें, अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस महीने में हम अपनी बख्शिश करवा लें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.